أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزات دے اتنے سکون سے بیٹھنے کی اور اتنا اچھا ارینج کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا لے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اپنے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کا ایک ایسا خزانہ تھے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے کبھی بھی محروم نہیں رہے آج ہم اپنے پیارے نبی سے کیسے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک رحمت ایک نعمت اور اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ بھی اور پوری انسانیت پہ بھی آج کا لیکچر پاکستان پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے جس میں ہم قرآن کا مطلوب انسان اس سیریز کو دیکھتے ہیں آج اس ٹاپک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے کردار اور عمل میں ایک خوبصورت نمونہ تھے ایک بہترین اسوہ حسنہ تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے تو آپ کو انسانیت کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا انداز ایسا ہے کہ آپ ہی رحمت ہیں سیدھا سے ایک جملہ آتا ہے آپ رحمت ہیں لیکن اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے سوا بھی کوئی رحمت ہے کہ نہیں ہے لیکن یہاں انداز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی رحمت ہیں یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اس جملے پہ غور کریں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آپ دیکھیے بجلی ایک رحمت ہے جی ہمارے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں پانی ایک رحمت ہے جی ہمیں بہت چیزوں میں اس کی ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے ایک رحمت سمجھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے ایک رحمت کی دلیل بنایا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات پہ تھوڑی سی ہماری نظر ہو کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا تو چند جھلکیاں اگر ہم اپنے تصور کی نگاہ سے دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے یعنی آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے آپ سب تھوڑا بہت تو جانتے ہیں نا بالکل انسانیت جو تھی وہ حیوانیت اور بہیمیت میں بدل چکی تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس بیٹیوں کی قدر نہیں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں بیٹیوں کو حق کیا ملنا تھا بیٹی کو جینے کا حق نہیں تھا اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت پہ جو سب سے بڑا احسان کیا وہ کیا تھا کہ اس کو جینے کا حق دیا آج لوگ شاید 8 مارچ یا کس دن کو ویمن رائٹ کے نام پر مناتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے جو احسان کیا وہ کیا تھا کہ عورت کو جینے کا حق دیا عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے عورت لوگوں کے لیے ایک بکاؤ مال تھی جس کا دل چاہتا ایک عورت کو اپنی میراث سمجھ کر لے جاتا ایک عورت کا اگر شوہر فوت ہو جاتا تو وہ اس عورت کے اوپر دوپٹہ پھینکتے خاندان کے کچھ لوگ اس کے اوپر دوپٹہ ڈالتے جس کا دوپٹہ اس عورت کے اوپر ڈل جاتا نا کہتے اب یہ اس کا جو مرضی کرے جس کو کہتے ہیں نا اس کا والی وارث اب یہی ہے بس کئی دفعہ اس عورت کا اپنا سوتیلا بیٹا جو تھا وہی اس کا وارث بن جاتا چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا چاہتا تو اس کو روک لیتا اس کی ساری جائیداد جو اس کی چیزیں تھیں اس کو من مار لیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنے خوبصورت طریقے سے آپ کے میرے لیے رکھا کہ اس نے آج مجھے آپ کو عزت دی آج عورت کی عزت ہے آج اسلام ایک عورت کو بہترین طریقے سے عزت دیتا ہے بالکل دیتا ہے تو اسلام کا بہت بڑا حق ہے تو مکے کے اور مدینہ کے اور دنیا پوری کے حالات بڑے خراب تھے ایک تو ہم نے عربوں کے اخلاقی حالات دیکھے نا लेकिन पूरी दुनिया के सियासी हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। अगर आप देखें तो उस वक़्त के जो बड़े बड़े मुल्क थे उसमें एक यमन था, आज भी हम यमन का नाम सुनते हैं सुनाते हैं, वहाँ बादशाही निज़ाम था, किंगशिप थी। और अमूमन बादशाह जो होते हैं वो अवाम पे जुल्म कर रहे होते हैं। और जब भी कभी आप दुनिया की तारीख देखेंगे तो इस्लाम से पहले बादशाहत के निज़ाम ने आम आवाम का खून निचोड़ा है। बस जगह दुनिया में ऐसे जालिम बादशाह भी नज़र आते हैं कि वो भूखे शेरों के सामने इंसानों को फेंकते थे। कुछ चारों तरफ जैसे आप जहन में लाइए कि मैच देखने के लिए लोग की जगहों में बैठते हैं ना, स्टेडियम, खुद सब जमा होकर बैठते थे और वहाँ लोगों को फेंकते और कई दिन के भूखे शेर उनको छोड़ देते। फिर वो शेर जब उस इंसान का तिया पांचा करते ना तो इसको एंजॉय करते थे। आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह है कि वहाँ की मिट्टी सुरख रंग की है, इतने लोगों का खून उसमें गया हुआ है कि वो मिट्टी ही सुरख हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा सा इसको सोच कर देखिए। यहूदी बादशाह जू नवास नाम का था, उसने नजरान के ईसाइयों पर हमला करके उनको ईसाइयत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फिर इसी तरह आप असहाबे अखदूद का किस्सा पढ़ते हैं कुरान में, कैसे आग की भट्टियाँ बनाकर उसके अंदर लोगों को डाला गया था। हीरा एक बहुत ही मारूफ जगह थी, वहाँ अक्सर फारसी हुकूमत का कब्ज़ा होता था। बीच में तवायफुल मुल्की भी रही, यानी जो आपको आज भी सियासत के नाम पे रस्साकशी दिखती है, जुल्म और बर्बरियत दिखता है, ये सब था। एक और बड़ी मारूफ जगह थी शाम, सीरिया आप आज कह दें, वहाँ रोमन्स की हुकूमत थी, रूमी थे, और रूमी क्रिश्चियंस थे, ईसाई थे। हिजाज जो मक्का मदीना और उसके इर्द गिर्द का इलाका ना, वहाँ कुछ हद तक मुंतजम अच्छे थे, यानी जिसको आप पार्लिमानी निज़ाम कह दें, यानी ऑर्गेनाइज सिस्टम था। जजीरतुल अरब जो आज भी आपके जहन में आता है, उसके तीनों सरहदी इलाके, यानी जहाँ उसकी तीन जगह से सरहद दूसरे मुल्कों में लगती थी गैर ममालिक में, वहाँ के सियासी हालात भी बुरे थे, इंसान मालिक और ग़ुलाम की कैटेगरी में बंधे थे। यदि एक रिश्ता जो अल्लाह और बंदे के बीच में हो सकता है सिर्फ इयाका नाबुदु, कि अल्लाह हम तेरे ग़ुलाम और तू हमारा मालिक, तू मालिक यौमिद्दीन भी और तू दुनिया का भी मालिक है, वहाँ इंसान दूसरों के थे। तबकाती तकसीम थी, ये अमीर ये गरीब, ये शूदर ये बरहमन, अगर आपने हिंदू मज़हब में देखा हो। और कबायली निज़ाम था, आज जैसे आप कहते हैं ना हम गुज्जर हैं, हम जाट हैं, हम शेख हैं, बिरादरी है ना। और बाज़ दफ़ा लोग बच्चियों को ऐसे ही बिठाए रखते हैं, शादी नहीं करते क्योंकि उनको गुजरों में करनी है, उनको चौधरियों में करनी है, उनको जाटों में करनी है। वहाँ भी यही था, झगड़े ही झगड़े, कभी ज़मीनों के झगड़े, जायदादों के झगड़े थे, और नस्ली फसादात थे, मज़हबी तासुब था। ख़ास तौर पे आप देखिए कि जो रोम की हुकूमत थी ये जालिम थी, अपने मातहत इवाम पर कई गुना टैक्स लगाती थी, गरीब की सारे दिन की दिहाड़ी टैक्सों में चली जाती थी, महंगाई के नज़र हो जाती थी। आपको कुछ हालात मुख्तलिफ नहीं दिख रहे होंगे, महंगाई महंगाई का रोना गरीब के लिए है। अमीरों के घर शादियों में आज भी 10-10, 12-12 खाने पकते हैं, और उससे ज़्यादा जो लोग खाते हैं ज़ाया होता है। वहाँ भी यही था। ये सारी हालात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आज के दौर में भी हालात बदले जा सकते हैं, अगर आज भी कोई मसीहा बन के दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में अमन चैन ला सकता है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वारिस होगा, जो आपके बताए हुए तौर तरीक़ों पे हुकूमत करेगा, जिसका अपना किरदार और अपना अखलाक इस किस्म का होगा। और आम लोगों की ज़िंदगी क्या थी, लाइव और लहव, गाना बजाना, शादी हो नहीं सकती ढोल पीटे बगैर, गाने की महफिल के बगैर वलीमा क्या वलीमा होगा, कॉलेजों के प्रोग्राम्स में कंसर्ट्स होंगे, इवन मजहब के नाम पर भी कहीं उर्स और कहीं मेले ठेले, ये सब उस वक्त भी था। मत सोचिए कि अल्लाह के नबी को बड़ी साफ सुथरी दुनिया मिली थी और आप आए और बड़े आराम से आसानी से इस्लाम फैला के चले गए। जितनी मेहनत मेरे अपने प्यारे नबी ने इस दुनिया को इस्लाम और अमन चैन देने के लिए की, अगर आज आपके 2 बिलियन उम्मती वही मेहनत कर जाएं, तो ईस्ट टू वेस्ट, मशरिक से मगरिब और शमाल से जुनूब पूरी दुनिया में चैन हो जाए। आज पूरी दुनिया में जो बेचैनी है, जो नफसी नफसी है, हर तरफ ही, आपको तो अपने मुल्क में महंगाई और ये चंद मसले दिखते हैं ना, आप ज़रा से इससे बाहर निकले, आप कहते हैं पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, छोड़ के जाइए तो सही, आपको वो जरासीम बाहर नज़र आने, आपने कहना है हमारे मुल्क की ये महंगाई बेहतर है, यहाँ की गंदगी बेहतर है, जो भी वो तो हमने साफ़ करनी कोई नहीं, लेकिन कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों के दीन और उनके इस्लाम को बिगड़ता देख नहीं सकते, हम उनको अल्लाह का इनकार करता नहीं देख सकते, उनको अपनी ही जिंस की तब्दीली करता नहीं देख सकते। बड़ी बड़ी जगहों के बड़े मसले, बड़े गम हैं। इसी तरह आप देखिए कि ईरान एक सुपर पावर थी, ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना, ईरान, फारस, रोम, ये उस वक़्त की सुपर पावर्स थी, बड़ी बड़ी हुकूमतें थी। तो ईरानी हुकूमत किसकी थी? मजूसियत की। और मजूसियत कौन होते हैं? आग की पूजा करते हैं। अवाम हैवानों की ज़िंदगी बसर करते थे और बादशाह ख़ुद को माबूदों की औलाद समझकर उस खित्ते की सारी आमदन, जो इनकम होती थी ना, वो अपने नाम पे कहीं चढ़ावे, कहीं न्याजें और कहीं कुछ तकब्बुर के साथ उसको इस्तेमाल करते थे। यानी अवाम का खून नचल रहा था और अमीरों की झोली में जा रहा था। जैसे किसी ने कहा कि अगर मोटरवे से हर रोज़ इतने हज़ार गाड़ियां गुजरती हैं और इधर से उधर जाती हैं और हर गाड़ी टोल देती है, तो फिगर थे, एक रिपोर्ट किसी ने शाया की हुई थी, कि सिर्फ इस मोटरवे की कमाई से डेली जो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है, उससे हमारे कितने मसले हल हो जाए। आप चाहें ना चाहें, आप चिप्स का एक पैकेट ख़रीदते हैं, दूध का एक डब्बा ख़रीदते हैं, ब्रेड ख़रीदते हैं, उस पर टैक्स अदा हो रहा होता है। अगर आप किसी बड़े स्टोर से ख़रीदें ना, तो साथ लिखा आता है कि इतने की असल चीज़ थी, और बल्कि बिस्किट के डब्बे पे देखिएगा इतने की कीमत प्लस इतना टैक्स, टोटल कीमत आपने दी, आपकी जेब से जाता है। अगर दयानतदारी से और हिकमत से और अच्छे तरीके से ये सब इस्तेमाल किया जाए, तो हमारी हुकूमत खुशहाल हो सकती है। बिल्कुल, ये सब पीछे दौर की सुगाते हैं। हम औरतें औरतों की बात करते हैं, औरत की कोई कदर नहीं थी, औरत को एक सेक्स सिंबल समझा गया था। आप अपने मुल्क के करीब हिंदुस्तान, जिसको इंडो पाक कहते थे, बरे सगीर पाक को हिंद कहते हैं, कुछ भी नाम ले लीजिए, वहाँ औरत पाँव की जूती, आज भी सुनते होंगे आप, औरत पाँव की जूती, ज़ात पात का रिवाज, शूदर, ब्रह्मन, क्या उनका अकीदा था कि ब्रह्मन भगवान के सर से पैदा हुए हैं नऊज़ुबिल्लाह, और शूदर भगवान के पाँव से पैदा हुए हैं, हाथ नहीं मिला सकते, एक जगह खा नहीं सकते, और फहाशी को तकद्दुस का नाम देकर इबादत गाहों तक फैलाया गया। आज भी जो उनकी सन्यासियाँ होती हैं, यानी जो उनके मंदिरों की टेक केयर करती हैं ना, वो कपड़े नहीं पहनती पूरे, बस इतने के उनके ख्याल में उससे उनका सतर छुप जाए। वजह क्या कि इन कपड़ों में तुम गुनाह करते हैं तो भगवान के इन जगहों पे जाकर तो ये करेंगे, तो फिर वहाँ मर्द औरतें इकट्ठे, तो क्या वहाँ बहुत अच्छा माहौल होगा? आज भी एक औरत ज़रा बन ठन के निकले तो कितने मर्दों की रालें टपकती हैं। नतीजा क्या होता था कि इवन ये मंदिर और इसी तरह से चर्चों में आप देख लीजिए, राहिबात, राहे बनने का तसव्वुर, और जिसको आप कह लीजिए कि शादी नहीं करेंगी नंस, आज भी मौजूद हैं ऐसी चीज़ें। अब उन पे शादी हराम है, औरतें कहती हैं हम जीजस के नाम पे अपना आप दे चुकी। यानी उनको ये सब क्यों सिखाया जाता है कि तुम जन्नत में जीजस यानी हज़रत ईसा की दुल्हन बनोगी, इसलिए इधर दुल्हन ना बनो। इसी तरह मर्द राहे बनते थे, उन्हीं के आपस में बेहुदा ताल्लुकात उन्हीं के चर्चिस के अंदर होते थे। कई चर्चिस ऐसे खुदाई के दौरान सामने आए कि जिनकी तहों में बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबीज़ के कब्रिस्तान देखे गए, क्योंकि जब गुनाह की यादगारें पैदा होती थीं तो बाहर दुनिया को तो नहीं दिखा सकते थे। ये हालात थे दुनिया के, आज भी किसी हद तक है कि फहाशी और ये, और छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ चुकी थी, तबाह कुल लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे और सबसे बड़ी बात है किसी को मज़हब की आज़ादी नहीं थी, नो रिलीजस फ्रीडम कह लें, मजहबी आज़ादी नहीं थी। ज़ालिमाना हुकूमतें जो चाहती वो करती, कोई इबादत कर सकता है करेगा, नहीं कर सकता नहीं करेगा। अवाम वही मज़हब इख्तियार करने पे मजबूर होती जो बादशाह का मज़हब होता, वरना वो जबर का शिकार होती। और फिर ऐसे हालात में अल्लाह को रहम आया, इंसानियत पे रहमत की बारिश बरसती है। और लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर, क्या इस बात फीहिम रसूलन, जब उनमें रसूल भेजा। और अल्लाह की रहमत की ये बारिश बरसती है, और अल्लाह ताला की रहमतों का ये ख़जाना ना सिर्फ यह कि मक्का मदीना अरब बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आ गया। जिस दिन बीबी आमना के वतन से एक बच्चा पैदा होता है कि जिसके सर पर उस वक्त बाप का दस्त शफ़क़त भी नहीं, वो कोई अमीर घराने का पैदा होने वाला बच्चा नहीं था, वो एक गरीब सरदार का पोता था, अब्दुल मुत्तलिब। सरदार थे लेकिन गरीब थे, और उस दौर में लोग क्या समझते थे कि अपने बच्चे को किसी और औरत का दूध पिलवाएं तो सेहतमंद होगा। आज भी ऐसा ही है, क्योंकि हर औरत के दूध की एक तासीर होती है। अमूमन शहरों में रहने वाली औरतें उतनी मज़बूत नहीं होती थी जिस्मानी तौर पे, हेल्दी नहीं होती थी जितनी देहातों में और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली औरतें होती थी। तो अरबों का रिवाज क्या था कि वो कुछ दिन के बाद शहरों का चक्कर लगाती, उनको पहले से भी मालूम होता था दाया औरतों के ज़रिए कि किस औरत के घर में बच्चा होने वाला है, फिर वो उस औरत के घर जाते और उस बच्चे को कुछ भाव ताव करके, जैसे एक पेशा था ये औरतों का दूध पिलवाना, और उसको ले जाती और पैसे लेती। इसी तरह के हालात में लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बात फ़ीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। बीबी हलीमा सादिया, आप सब ने बड़ी मारूफ नज़म भी सुनी होगी कि हलीमा तेरे मुकद्दरां दे सदके, बड़ी प्यारी पोएम है, जितनी को मैंने सुनी है शायद एक आध जुमले के अलावा मुझे उसमें कोई ऐसी शिरकिया बात नहीं दिखी। लेकिन वो गरीब घर से थी, खुद अपना किस्सा सुनाती हैं कि मेरे घर में गुर्बत थी, कहत साली थी, जैसे बहुत अरसा बारिश ना हो तो क्या होता। और वो कहती हैं कि जब शहर की तरफ जाने के लिए दूसरी मेरी दोस्तें निकली तो मैंने भी अपने शौहर से कहा कि हम भी चलती हैं। इनका अपना बच्चा भी था, ज़ाहिर है अपना बच्चा था तभी दूध था, लेकिन कहती है कि मेरे जिस्म में इतना दूध भी नहीं था कि मेरा बच्चा पी सके। घर में बकरी थी लेकिन पानी ना होने और सब्ज़ा ना होने की वजह से उसके दूध सूख चुके थे। तब ने कहा कि चलते हैं। घर में एक दरख्त भी था लेकिन पानी ना होने की वजह से बिल्कुल सूख चुका था। और वो कहती हैं कि मैं भी अपनी लाहर सी गदी पे सवार होकर अपने शौहर के साथ मक्का की तरफ बढ़ी, लेकिन हमारी गदी चल के नहीं दे रही, हिम्मत नहीं बेचारी में, ताकत ही नहीं है। कहती है मेरी दोस्तें मेरे करीब से गुजर गई, अब क्या हुआ। ये कहती है कि मेरे साथ से सारी मेरी सहेलियाँ एक एक करके गुजर गई और मेरी गदी बेचारी आहिस्ता 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 चल रही है, हत्ता कि मैंने अपने शौहर से कहा सारे अमीर घरों के बच्चे तो ये ले जाएंगी, हमें क्या मिलना है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। कहती चलते चलते शाम हो गई, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि हमारी सहेलियाँ एक एक करके वापस आ रही हैं और गोदों में उनके बच्चे, अमीर घरों के सरदारों के पैसे वालों के बच्चे ले। कहती ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने शौहर से कहा कि चलते हैं वापस, अब सारे तो बट गए, हमें क्या मिलेगा। लेकिन फिर यही सोच के कि जब आए हैं तो देख लेते हैं कुछ तो ले जाए, और कहती हैं कि हम गए और हमें पता चला कि मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसको हर औरत पे पेश किया गया, लेकिन गुर्बत के मारी औरतों ने किसी ने उसको कबूल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि उसके वारिसों के पास देने के लिए कुछ है नहीं। गरीब थे वो अब्दुल मुत्तलिब। उस दौर में सरदारी का ये नहीं मतलब था कि पैसे वाले। अच्छा, तो बेचारे खुद नहीं खिला सकते अपने बच्चों का, एक और बच्चे का कहाँ से लें। कहती हैं कि हम पे भी उस बच्चे को पेश किया गया। बच्चे के चेहरे पे मोहब्बत पड़ी थी, खूबसूरती थी, कशिश थी। एक लम्हे के लिए तो यही सोचा कि हम भी इनकार कर दें, कि हम इसको पालेंगे कैसे। लेकिन फिर न जाने क्या बात थी। अब देखिए ये सच्ची बातें, आप खोलिए रही को मखतूम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात खोलिए, उसमें आपको मिलेगा विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका बचपन। ये कहती हैं कि ये सोच के कि चलो, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, उस बच्चे को लेते हैं। कहती हैं उस बच्चे को लेने की देर थी और हमने वापसी का रास्ता लिया। उसके बाद से फिर जो हमने मौजज़े देखे वो मैं बयान नहीं कर सकती। कहती वही गधी जो आते हुए इतनी हल्की हल्की चल रही है, वो गधी फरलाटे भर रही है, भाग रही है। हत्ता कि कहती हैं कि हमारी वो सहेलियाँ जो कितनी देर पहले की जा चुकी थी, थोड़ी देर में हम उनको क्रॉस कर गए। और वो कह रही हैं ये देखो अब उस वैब की बेटी को देखो, ये इसको क्या हो गया। और कहती हैं कि मेरे अपने जिस्म में दूध भर गया, मेरा अपना बच्चा जो कई दिन से भूखा था उसने भी पिया और इस बच्चे ने भी दूध पिया। कहने लगी मैंने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ने हमें कोई बड़ा कीमती बच्चा दिया। बस उसके बाद तो वो कहती हैं घर आने की देर थी, हर दिन हम अल्लाह की रहमतें देखने लगे। बकरी के थन दूध से भर गए, बेरी में सब्ज़ा आ गया। और ये रोज़ अपनी बकरियों को चराने के लिए जब भेजती तो कहती जब मेरी बकरियां वापस आती तो उनकी कोखे भरी होती, यानी पेट फूले होते खा के और थन दूध से भरे होते, और जो दूसरे लोगों की बकरियां थी उनके पास चारा नहीं होता। हत्ता कि शहर में ये बात मशहूर हो गई कि तुम भी वहाँ जाकर बकरियाँ चराओ जहाँ हलीमा की बकरियाँ चरती हैं। सोचिए ज़रा। और उसके बाद फिर जब उन्होंने एक तो देखी चीज़ तो कहती है बस उसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी में वो ठंडक और वो खूबसूरती आई कि मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो गई। हत्ता कि आप सब ने वो वाक़या सुना होगा कि 2 साल की उम्र के करीब जब हुए अल्लाह के नबी तो आपके घर वाले आपको लेने आए, लेकिन हलीमा ने कहा कि मेरा दिल नहीं करता इस बच्चे को अपने आप से जुदा करो। और फिर आखिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ देर और रोक लिया। मेरा आपसे सवाल है और आप भी खुद से कीजिए, नबी के बचपन में उनकी ये रहमतें थी और घर था हलीमा का, तो फिर जवान होने के बाद नबुव्वत का ताज सर पे रखने के बाद उस नबी की क्या रहमतें होंगी, सोचिए तो सही। आज वही नबी उसकी उम्मत इतनी परेशान क्यों है कि रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। आज ये क्यों है, आज ये बात क्यों सुनने पड़ती है कि उम्मत मुस्लिमा पे बड़ी मुश्किलात है, इसकी वजह क्या है, इसको सोचिए, इसको जहन में रखिए। इसलिए कि जितना ज़्यादा हम अपने नबी की इस रहमत से अपने आप को करीब करेंगे, चूँकि तذکرہ किया ना तो पता चला कि बाद में आप अगर उसको सुनते हैं तो पता चले उसमें कोई गड़बड़ ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ख़ुद भी इस चीज़ का नज़र में रखना पड़ता है कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। अभी देखती हूँ अगर आपको सुना सकी तो सुनवा दूँगी। और आपने इसको इस सोच से सुनना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद एक रहमत था कैसे।
हलीमा मैं तेरे मुकद्दरातों सदके तू मदनी दा झूला झूलेदी बीहों से। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरातों सदके तू मदनी दा झूला झूलेदी बीहों से। नि सोहने दा ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰਾਨੀ ਤੂੰ ਤੱਕਦੀ ਤੇ ਰਹੀਏ ਝੂਮੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰਾਨੀ ਤੂੰ ਤੱਕਦੀ ਤੇ ਰਹੀਏ ਝੂਮੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਸਜਨ ਕੋ ਤੂੰ ਰਹਿਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤਵੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਜਨ ਕੋ ਤੂੰ ਰਹਿਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਚ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਰੁਸਦਾ ਵੀ ਹੋਸੀ ਮਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਕਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਚ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਰੁਸਦਾ ਵੀ ਹੋਸੀ ਮਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੁਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਨਵਾਹ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਜਲਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਹ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਜਲਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਠੋੜੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਨਵਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਜਲਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਠੋੜੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ
ਸਮਝ ਆਇਆ मेरे लिए आप लोगों से अच्छा कोई नहीं इसको समझ सकता ये ज़ुबान भी कुछ सराइकी टाइप थी मुझे खुद कई लफ्ज़ों को ज़रा गौर करना पड़ा लेकिन है बात यह कि क्या इसको सुनने के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत महसूस हो रही थी बचपन तो था ना तो जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को पैदा किया तो उनके बचपन में भी एक मोहब्बत डाल दी जो आपको देखता था ना उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आती थी और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा से बड़े हुए फिर कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे कि जिससे हज़रत हलीमा को डर हो गया कि कोई इस बच्चे का दुश्मन है जिसमें आपका शक़े सदर हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपका सीना खोल कर सीने में जो शैतान का हिस्सा या कोई ख्वाहिशात ऐसे उसने उसको निकाल के धो दिया था अल्लाह ने अपनी रहमतें डाल दी फिर एक बार दोबारा हुआ था शक़े सदर जबकि आपको मेराज पे ले जाया जाना था ना तो हम जो बात कर रहे हैं वो मेरे आपके मतलब की क्या है कि अल्लाह के नबी ने कैसे उस दौर के सारे फितनों सारी खराबियों को ख़त्म किया कैसे उन जालिम हुकूमतों का खात्मा हुआ हर शख्स को मजहबी आज़ादी मिली औरत को इज़्ज़त मिली आज ह्यूमन राइट्स के नाम पर जितनी भी बातें की जाती हैं ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बताई आपके अकवाल और आपकी बातों की रोशनी में औरत की इज्जत है और आज 8 मार्च को अगर कोई लोग चंद बात कह के विमेन राइट की बात करते हैं तो उनको जवाब दीजिए कि इस्लाम में 8 मार्च नहीं पूरा साल विमेन डे है कि नहीं आप अपने घरों की रानियां हैं मलकाएं हैं आपकी मर्ज़ी से पकता जो मर्ज़ी किसी को दे ले 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 बेचारे आम तौर पर तो मर्द कोई नहीं पूछते मैं कहती हूँ एक दफ़ा कोई पाकिस्तानी औरतों को आकर देख जाए बाहर के प्रोपेगंडे करने वाला कभी ना कहें कि औरतों पे बड़ा जुल्म है चंद बातों को मशहूर करके वो मीडिया पे मशहूर कर दें वो और बात है लेकिन मर्द गरीब को तो पता ही नहीं है आप उसको भिंडी खिला दें वो भिंडी खा जाएगा दाल दे दें आप सारा दिन जो मर्जी पकाती खाती रहें जितनी पार्टियाँ औरतें अटेंड करती हैं मर्द गरीब कहाँ करते हैं आपके पास कितने कपड़े हैं और मियाँ साहब के पास कितने हैं? हैं, है तस्वीर कायनात में, है वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग रौनक, रिश्ते किधर करने किधर नहीं करने, परी का जुड़ा कैसा, ये किसको देना लेना, ये सब कौन करता है? आप करती हैं, औरतें करती हैं। तो अल्लाह के नबी ने आकर ना सिर्फ ये कि लोगों को शऊर बख्शा बल्कि पूरी इंसानियत का रुख बदल दिया। एक ईसाई स्कॉलर था माइकल हार्ट, उसका नाम था, उसकी बुक है दी हंड्रेड्स, दुनिया की 100 बा असर शख्सियात जिन्होंने दुनिया पे असर आ डाले। आप पता है कि उसमें नबी सल्लम को कौन सा नंबर मिला? नंबर 1। वो खुद कहता है कि मेरी किताब जब रिलीज़ होगी तो मुझे पता है कि ईसाइत की दुनिया में कोहराम मच जाएगा, क्योंकि उसने उस किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 और ईसा अलैहिस्सलाम को नंबर 3 या 4 पे रखा है। सोचिए आप, लेकिन सच सच होता है। तारीफ हो जो दुश्मन करे, दोस्त तो करते ही है ना। अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह की रहमतों का एक ऐसा ख़जाना थे जिसके बाद हकीकी मानों में ख़जानों का मुँह इंसानों के लिए, क्या मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने खोल दिया। दूर दराज के इलाकों तक नबी अरबी का पैगाम पहुंचा दिया। ऐसे प्यारे साथी दिए अपने नबी को कि जिन्होंने इंसानियत का मुकद्दर बदल दिया। अबू बकर, उमर का, फारूक का दौर तो देखिए, उस्मान गनी, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, खुल्फ़ाए राशिदीन का दौर देखिए। अमन था, चैन था, सुकून था, दुनिया ने सुख का सांस लिया। इन खुलफा के अदवार को ढूंढ कर देखिए, सब के सब बराबरी थी। ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, सब के हकूक थे, ज़िम्मियों के हकूक थे। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उमर सानी कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ को, इतनी खुशहाली थी उनके दौर में कि ज़कात का माल किसको दें को मिला ही नहीं। इनके जो उमाल थे, जो हर साल लोगों से ज़कात वसूल करते थे, इनको आकर ख़बर देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इतना माल है, किसको दें? कहा गरीबों में बांट दो, कहा आपके मुल्क में कोई गरीब ही नहीं है। अच्छा, एक होता है गरीब ही नहीं और एक कहते कोई गरीब बचा ही नहीं, यानी सारे ख़त्म हो गए हैं। आज हमारा ये हाल है, गरीब पिस रहा है, ख़त्म हो रहा है, ख़ुदकुशियाँ कर रहा है और अमीर मोजें खा रहे हैं। उस दौर में गरीब ने गुरबत नहीं बची। कहा अच्छा बेवाओं को दे दो, कहा बड़ी खुशहाल है। अच्छा जाके जेल के कैदियों को दे दो, कहा जेलों में है ही नहीं लोग, जुर्म ही ख़त्म हो चुके हैं। देखिए ये फैंटेसी नहीं है, मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है। कहा अच्छा जाओ फिर इस पैसे का दाना खरीदो और दूर पहाड़ों पे डाल दो, आके परिंदे खा जाएं। ये दौर फिर आना चाहता है, लेकिन नबी सल्लम की पहले तालीमात को दोहराया जाए, उनके दिए हुए इस कुरान, इस तोहफे को समझा जाए। दुनिया ने खुशहाली का जो दौर देखा, सूद से पाक निज़ाम क्या होता है, तरक्की कैसे की जाती, इसका अमली नमूना आपकी ज़ात थी। अल्लाह के नबी सल्लम एक ऐसे दीन के साथ भेजे गए थे जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। आज की पूरी मॉडर्न साइंस, उसकी राहें हमवार की गई अल्लाह के नबी के उलूम की रोशनी में। कितनी इजादात, इन्वेंशंस हुई मुसलमानों ने की। अलबैरूनी कौन था? मुसलमान था। और नाम याद है आपको? नबी सल्लम के बाद वो लोग जिन्होंने दुनिया को दिया अलजेब्रा, आज पूरा एक इल्म है मुस्लिम के नाम पे। अर्शमीदस, असूल अर्शमीदस आज भी एक बहुत बड़ा असूल है फिज़िक्स में, मुसलमानों के थे। मुसलमानों के विरासत के कवानीन की वजह से अलजेब्रा वजूद में आया। हर साल पूरी दुनिया मुसलमानों के हज पर जाने की ज़रूरत महसूस करती थी, इस वजह से भी ज्योग्राफिया, नक्शे और मैप्स, जो आज आपका गूगल मैप और लोकेशन तक में ढल गया है, और रास्ते बनाने के आलात मुसलमानों ने ईजाद किए कि हज पे जाना है कैसे जाएं, मंजिल थी ना, जाएं कैसे, दूसरे तो अपने हिसाब से चलते थे। नमाजों के औकात, क़िबले की सिमत, चांद की दुरुस्त तारीख मालूम करने के लिए कितने ही साइंसी मजामीन सामने आ गए। ये पूरे आसमानों पे जो गैलेक्सीज हैं, सियारे, सितारे, आसमानी सांप, ये मुसलमानों की ईजाद है। अपने बच्चों को मुस्लिम हीरो से मिलवाइए, वरना उन्होंने उल्टे सीधे हीरो बनाए हुए हैं जिनको वो कॉपी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम एक ऐसी शख्सियत है जिनमें अल्लाह ताला ने सारी खूबियां जमा कर दी। सूरत कलम की आयत 4 में क्या आता है? وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ نمونے تھے، آپ فائز تھے. آپ کے بارے میں گواہیاں بھی موجود ہیں آپ کے اصحاب کی. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال نبی کے ساتھ رہا، آپ نے ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہ کیا. آپ جانتے ہیں 10 سال کے بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیا حضرت انس سے نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ کی ازواج بیویاں تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتی ہم جیسی، اللہ ہمیں ہدایت دے. ساری دنیا تعریف کر دے گی، بیوی کہتی رہن دے میں نہیں نبھا رہی، مینوں پوچھو. آپ کی ازواج کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ اختیار دے دیا گیا کہ چاہو تو نبی کے ساتھ رہ لو، نہیں ہے تو آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر جدھر مرضی جاؤ. تو سب نے بغیر سوچے بغیر کسی سے مشورے کی ضرورت محسوس کیے اللہ کے نبی کو چنا، جس میں سب سے کم عمر کی عائشہ سب سے نمبر ون پہ تھی. بچیوں کو عموماً اتنی سمجھ نہیں ہوتی لیکن نبی تھے ہی ایسے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا یا اس کے لیے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. یہ مسند احمد کی روایت ہے 9155. تو بادشاہی ہے. جو آج میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کسی چیز کو احسان نہیں کہا، نعمتیں تو ساری اسی نے دی ہیں، جان مال وقت صحت ماں باپ محبتیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے جتلایا ہے. جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احساس دلایا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے. کہاں ہے؟ سورۃ آل عمران 164. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک مسلمانوں پر مومنوں پر اللہ کا احسان ہے. کیا؟ اس بات فیہم رسولم من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ. اب یہ ہے اصل آج کا نقطہ جس پہ غور کرنا ہے. نبی نے کیا کام کیا، کیسے وہ ایک خزانہ تھے، کیسے وہ ایک رحمت ہے، یتلو علیہم آیاتہ. اور یہ نبی کا سلیبس بھی ہے. اور الحمدللہ آج نور القرآن کے ہر شارٹ یا لانگ کورس کا یہی سلیبس ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا تھا. آج آپ سب کا بھی یہی کام ہے. خوش آپ والے یہاں جمع ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے مجھے قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے ایمان ہے. 5 حق ہیں نا قرآن کے، ان میں سے ایک ایمان لانا اور دوسرا صحیح پڑھنا. نبی نے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، آپ بھی سیکھیے. آپ کے ارد گرد نور القرآن کے چھوٹے چھوٹے کئی سٹیشنز بن چکے ہیں، دعا کریں کہ اس سال کوئی بڑا بن جائے. پھر دوسرا کیا تھا؟ وہ زکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں. تزکیہ کیا؟ ان کو پاک کریں. آج ہمیں اور ہماری نسلوں کو پاک ہونے کی کتنی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں کی نظریں پاک نہیں ہیں، سوچیں پاک نہیں، ہاتھوں میں فون ہے، ہاتھوں میں نیٹ ہے، کچھ بھی دیکھ لیں. کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمارے بچے کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس بھی آ جائے لیکن اس کی نظریں جھکی ہوں؟ وہ قرآن سے جوڑنا، دل میں اللہ کا خوف، تقویٰ. بہت سارے واقعات ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے انسانوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تعلیم دی کتاب اور حکمت کی. یہ کیا؟ قرآن کی تفسیر اور نبی کی حدیث. تفسیر بھی آتی ہے اس میں، ترجمہ بھی آتا ہے. سمجھیں تو صحیح، نور القرآن بھی یہی کرتا ہے. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی جماعت بھی نہیں، بس ایک تعارف ہے. جیسے کسی بھی اسکول کا نام ہوتا ہے، کسی بھی دکان کا نام ہے، جیسے انور ڈھوڈا، کتنی برانچیں ہیں ان کی، اتنی تو آپ بھی بنا لیں نور القرآن کی. ہے کوئی انور ڈھوڈا والوں کے گھر سے بیٹھا ہوا ادھر؟ جب میں پہلی دفعہ آئی تو میں تو دیکھ دیکھ کے حیران تھی، پھر گنی بھی تھی شاید، 93 دکانیں تھیں ایک ہی نام کی، اور سب کے اوپر لکھا ہوا تھا ہم ہیں وہ اصل. تو انور ڈھوڈالوں سے رابطہ کرائیں، ہر دکان کے ساتھ ایک نور القرآن کا چھوٹا سا کوئی کیمپس بنوا لیں، یہ کام آئے گا. مٹھائی کھلاتے ہیں نا لوگوں کو، خوش ہوتے ہیں نا لوگ آپ کا ڈھوڈا کھا کے. ہم بھی جب جائیں اکثر ہمیں بھی ساتھ مل جاتا ہے. ابھی لاسٹ ٹائم بھی ہماری ایک بڑی اچھی ساتھی ہیں، انہوں نے دیا، کہاں کہاں نہیں میں نے بانٹا. میں نے کہا خبردار، یہ ادھر سے آئے نا یہ کلاسوں میں بٹے گا. ملتان تک میں جس اسکول میں جس شہر میں گئی دیا گھر والوں کو، میں نے کہا لیکن آپ نے اکیلے نہیں کھانا، یہ کھلانا ہے ساتھ دوسروں کو، کیونکہ یہ وہاں سے آیا ہے. تو میں اس کو اپنی ذاتی دنیا میں کیوں رکھوں نا. तो सुनने कहने का मतलब ये कि मिठाई की तरह कुरान की भी ज़रूरत है। अब इस वक्त मस्जिदें भी हैं, इदारे सब कुछ है, लेकिन प्यार के साथ दीन सिखाने की ज़रूरत है। डंडे सोटे वाला दीन नहीं, मीठा दीन। और इसके साथ क्या कहा अल्लाह ने, वइन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालि मुबीन, वो इससे पहले बड़ी खुली गुमराही में थे। हम सब कुरान से पहले कि अपनी ज़िंदगी देखें तो हमें ये आयत समझ आएगी। और आज जो मैंने आपको चीज़ें दी, आपको समझ आया कितनी ज़रूरत थी इंसानियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह ने रहमत की बरखा बरसाई और हर तरफ खैर हो गई। अल्लाह ने जितने रसूल और पैगंबर भेजे वो एक ख़ास वक्त के लिए थे, मखसूस इलाकों में आए थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए रहबरी का फरीज़ा अंजाम कर गए। और आपकी नबूवत आम है, आप पर दीन की तकमील हुई। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम उनके उम्मती हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारी माँ और हमारे बाप मुसलमान ना होते तो क्या आज हम मुसलमान होते? क्या हमने अल्लाह के नबी के बारे में जाना? अल्लाह के नबी एक ऐसी ज़ात है जिन्होंने ना सिर्फ ये कि आखिरत की कामयाबियों की राह दिखाई, बल्कि आपने आज की इस महज़ब दुनिया की तरक्की के रास्ते बताए। आप बानी थे दीन और दुनिया की तालीम के देने के, और आप एक ऐसा ख़जाना थे कि जिसने आपका दामन थाम लिया, दुनिया में भी इज्जत आखरत में भी। दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का मुकद्दर बड़ा रोशन है, शर्त एक है कि वही तौर तरीके इख्तियार कर ले, वही काम कर लें जो आपने चाहे। तो कुरान का मतलूब इंसान बनने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना पड़ेगा, और आपकी पैरवी के बगैर गुजारा नहीं है। सूरत आल इमरान के आयत 31 पे मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो अल्लाह की मोहब्बत के हसूल का जरिया नबी सल्लम की पैरवी है, दुनिया में इज्जत नबी की पैरवी, हौज़े कौसर से पानी पीना है तो नबी की पैरवी, नबी की सिफारिश लेनी है तो नबी की पैरवी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको बेहतरीन जज़ा दे, और इंशाल्लाह यहाँ पे रुकेंगे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।